ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा से मिलन का दिवस है और प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाबा को निमंत्रण देते हैं कि बाबा आप आओ हमसे मिलने के लिए। तो किसको निमंत्रण देते, कौन से बाबा को निमंत्रण देते हैं? हाँ, शिव बाबा जो परमधाम निवासी है उनको निमंत्रण देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी देह नहीं है और हम आत्माओं को देह है और वो हमारे से हमारे जैसा होकर मिले, इसलिए फिर हम उनको कहते हैं बाबा पधारिए अव्यक्त ब्रह्मा बाबा में और फिर हमारे जैसे बनकर हमारे से मिलिए। तो ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए तो फिर शिव बाबा ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर में और फिर दोनों गुलजार दादी जब तक स्थूल शरीर था उसके तन में आते थे और फिर हमारे जैसे हो जाते थे देह, तो हमसे मिलन मनाते थे। लेकिन अब गुलजार दादी भी अव्यक्त हो गए तो अभी उस किसी तन में आकर मिले उसका कल छोटा सा दृश्य हम सभी ने देखा या सुना होगा। आपने देखा कल का भोग का, सभी ने देखा कि कैसे गुलजार दादी ने अपनी इच्छा व्यक्त की बाप दादा कि मुझे नहीं पता आप चाहते या नहीं, पर मेरी दिल है, मैं बहुत लंबे समय से यज्ञ वत्सों से नहीं मिली हूँ, निमित्त भाई बहनों से नहीं मिली हूँ, तो मेरी दिल है मैं जाऊं और मिलूं। तो बाबा ने क्या कहा, आप जाओगी लेकिन अकेली नहीं, मैं भी चलूंगा, है ना। तो कल बाबा ने वो छोटा सा हमें रोल दिखाया, लेकिन शायद ये जैसे गुलजार दादी के तन में हर हमारी जो डेट फिक्स होती थी और पूरी मुरली चलती थी वैसा तो मिलन नहीं होगा, क्योंकि ये भी कह दिया ना उनको कि पहले तो तुम लंबी लंबी दृष्टि देती थी बैठ के, अभी वो नहीं करना है, अभी जाके नयन मुलाकात करके तुरंत वापस आ जाना है, बस जाओ और आओ। तो अभी हमें भी तो यही अभ्यास डालना है, जाओ और आओ, कहाँ जाओ और कहाँ आओ। हाँ, तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है हमारा परम धाम, एक है हमारा अव्यक्त वतन और एक है हमारा स्थूल वतन। जब हम परम धाम में थे तो मात्र निराकारी ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में होते हैं और वहां से आत्मा निकलती है बिना शरीर के, जिसको बाबा साकार मुरलियों में कई बार कहते हैं, आत्मा नंगी आई थी और आत्मा को नंगी वापस जाना, जिसका अर्थ है न अंगे। नहीं, जैसे नाला एक शब्द बोलते हैं उसका असली अर्थ क्या है, जो लायक नहीं है, ऐसे ही नंगे या नंगी मतलब न अंगे, कि जब परमात्मा के घर से परमधाम से आत्मा नीचे उतरी तो अंग नहीं थे, तो उस समय आत्मा संपूर्ण प्योर है और वो अपनी लाइट को चमक फैलाती हुई नीचे आती है और माँ के गर्भ में जो शरीर तैयार है वहां जाके भ्रुकुटि में निवास करती है। और आत्मा की जिस प्रकार की उसके लाइट की परसेंटेज है, भले हम सब आत्माएं वहां पर पवित्र है लेकिन फिर भी नंबर वाइज तो बाबा ने कह दिया है सब में है, क्योंकि हम तारे हैं, तो तारे देखो ना, हर एक की अपनी अपनी चमक है, तो अपनी अपनी चमक के आधार से फिर वो शरीर का डिजाइन और आगे तैयार होता है और पूर्ण तैयारी के बाद बाहर आता है और हम जीवन जीते हैं। तो जब हम सत्युग में जीवन जी रहे होते हैं तो बाबा ने कहा आपकी वहां आत्मा अभिमानी स्थिति होती है, ये कहा ना, लेकिन परमात्मा अभिमानी स्थिति होती है वहां पे? नहीं होती है। तो जो आत्मा अभिमानी स्थिति होती है, क्या हम वहां पर अभ्यास कर रहे होते हैं? नहीं, वो अभी संगम पर जो हमने प्रयास किया उसका वो फल है कि अभी अभ्यास किया और वहां पे उसका रिजल्ट कि अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारी वो आत्म अभिमानी स्थिति बनी हुई है। परम धाम से जब आए उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? शरीर के बिना, जिसको कहेंगे निराकारी, जिसको कहेंगे अशरीरी, जिसको कहेंगे विदेही। तभी तो अपना एक गीत है ना, विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, ये गाते हैं ना गीत में कि जैसा बाबा है विदेही, मतलब बिना देह का, अशरीरी माना भी बिना शरीर का। एक होता है जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा निकल गई है, पीछे सिर्फ शरीर पड़ा है, देह पड़ा है, तो उसको हम कहते अर्थी, उसको हम कह रहे अर्थी। अर्थी माना आत्मा के, रथी के बिना रथ। लेकिन जब अशरीरी या विदेही कह रहे माना बिना शरीर के आत्मा, उधर है बिना आत्मा के शरीर और इधर है बिना शरीर के आत्मा। अब बिना शरीर के जो आत्मा है वो संपूर्ण प्योर है। लेकिन फिर बाबा ने हमें ये भी ज्ञान दिया कि हमारे पास, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वयं को आत्म स्वरूप में देखने का अभ्यास करो और सभी को भी उस ज्योति स्वरूप बिंदी स्वरूप आत्मा को देखने का अभ्यास करो। फिर हम बाबा को अभ्यास करते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको कह देते हैं, बाबा मुश्किल होता है, बिंदी कब खिसक जाती है पता ही नहीं चलता है। तो उसका भी एक समाधान बाबा ने दिया कि कोई बात नहीं बच्ची, अगर बिंदी खिसक जाती है, लंबा चौड़ा शरीर देखने का अभ्यास है, तो फिर क्या करो, लाइट वाला शरीर देखो, ये पंच तत्व वाला स्थूल शरीर नहीं देखो, लेकिन लाइट वाला एंजेलिक बॉडी फरिश्ता शरीर देखो। तो इससे क्या पता चल गया अभी कि तीन चीजें हैं, आत्मा, लाइट वाला शरीर, स्थूल शरीर, है ना, तीन चीजें है ना, आत्मा है, लाइट वाला शरीर है और ये स्थूल शरीर है। अब ये जो लाइट वाला शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध उतना ये शुद्ध, फरिश्तों की लाइट बॉडी चमकती हुई और भूतों की काले काले, है तो वो भी सूक्ष्म ना, काली मीन्स डार्क होती है, माना प्रकाशित नहीं होती है, क्योंकि कलर जो होता है जितना प्योरिटी उतना वाइट उतना चमक, और जितनी जितनी इम्प्योरिटी उसमें क्या हो जाएगा, कमी आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बाहर सूर्य चमक रहा है, हम अंदर बैठे हैं, खिड़की है, खिड़की पर कांच लगा है, कांच जब तक ट्रांसपेरेंट है साफ और स्वच्छ है, सूर्य की लाइट जैसी है वैसी महसूस हो रही है, लेकिन कांच पर परतें चढ़ती जाए मैल की, तो आने वाली लाइट भी कैसी उजली उजली महसूस होगी? क्या नहीं होगी ना उजली उजली महसूस, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, मैल जमा हो गया, इसीलिए डार्क दिखेगा ना। तभी काबूतों की जो बॉडी होती है सूक्ष्म शरीर, वो व्हाइट नहीं होता है, डार्क होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि बाबा हमें हर अभ्यास करने को कहते हैं। एक अभ्यास अशरीरी विदेही निराकारी का भी अभ्यास करने के लिए कहते हैं, फिर दूसरा अभ्यास कि अपने आप को एंजल के रूप में देखो, ऐसा भी अभ्यास करने के लिए कहते हैं, और एक अभ्यास कहते हैं देह में रहते हुए देह से न्यारी वाली स्थिति। ये तीन अभ्यास करने के लिए हमें कहते हैं बाबा। तो ये जो अभ्यास है पहला वाला, क्योंकि आए कैसे थे, बिना देह के आए थे, लेकिन आए कर्म करते चले गए, तो बीच वाला जो कांच है, बीच वाला जो कांच है या सूक्ष्म शरीर है, वो धीरे धीरे क्या होता गया, मैला होता गया। और इसलिए आत्मा जो आज भी शुद्ध है, बाबा एक तरफ कहते मैं तुम पतितों को पावन बनाने आया हूं, और एक तरफ कहते तुम तो हो ही शांत स्वरूप, तुम तो हो ही शुद्ध स्वरूप, तुम तो हो ही प्रेम स्वरूप। तो ये किस प्रकार से कह रहे कि शुद्ध आत्मा शुद्ध है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, बीच वाला कांच गड़बड़ कर रहा है, बीच वाला कांच गड़बड़ कर रहा है। अब इस कांच को जब तक मैं साफ नहीं करूं, उस शुद्ध आत्मा से आने वाली शुद्ध वाइट किरणें कहो, प्रेम शांति के वाइब्रेशन कहो, वो मैं उतना नहीं अनुभव करूंगी जितना वहां से निकल रहा है। नहीं कर सकती ना, क्योंकि बीच में एक बाधा है। अब जब तक मैं इसको साफ नहीं करती हूं तब तक मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन साफ करने में भी तो टाइम लग रहा है हमको, है ना, टाइम लग रहा है ना। और इसीलिए बाबा कहता है अशरीरी स्थिति का अनुभव करो, अर्थात कुछ कुछ समय के लिए कांच को ही निकाल दो ना बीच से, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आने लगे ना। क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं कि मैं इतना इसको बैठ के साफ करूं, और साफ करने भी जाती हूं तो इतना गंदा है कि इतना जल्दी वो साफ नहीं हो रहा है। तो कुछ पल के लिए क्या कर दे हम, कांच कोई साइड में कर दे, तो फिर तो सीधा सूर्य दिखेगा ना। और तब बाबा कहते हैं विदेही स्थिति का अभ्यास करो, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। और बाबा कहते विदेही स्थिति के अभ्यास में, अशरीरी स्थिति के अभ्यास में, उसमें भी हम कह देते हैं कि असफलता होती है, तो बाबा ने उसका सरल उपाय दिया है। दुनिया में भी कोई कन्या जब बड़ी होती है या वो लड़का जब बड़ा होता है, तो माँ बाप जब उसके लिए वर या वधू ढूंढने की कोशिश करते हैं, मंगेतर ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक इंग्लिश शब्द यूज किया जाता है, मुझे अपनी कन्या के लिए मैच ढूंढना है, मुझे अपने लड़के के लिए मैच ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जो भी मंगेतर होगा, हम क्या चाहते हैं, दोनों में क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं, विदेही स्थिति या अशरीरी स्थिति की अनुभूति में अगर कमी है, उसका एक कारण है कि जो विदेही है, जो अशरीरी है, उसको अपना युगल नहीं बनाया है आपने। मैचिंग चाहिए ना, तो वो तो अशरीरी रहता ही है हमेशा, वो तो विदेही हमेशा रहता ही है, तभी हमें उसको इनविटेशन देना पड़ता है हमारे जैसे बनकर हमारे पास आओ। तो वो तो सदा ही रहता है, और इसलिए हमें क्या करना होगा, कुछ कुछ समय के लिए कांच को ही हटा दे और सीधा सिर्फ और सिर्फ बिंदु रूप ज्योति रूप आत्मा को देखे और सीधा परमपिता परमात्मा के उस महाज्योति स्वरूप को देखे। और ये कुछ कुछ क्षण की प्रैक्टिस ही फिर हमें देही अभिमानी अर्थात देह में रहते हुए देह से न्यारे होकर कर्म करने में मदद प्रदान करेगी। क्योंकि हम तो ये भी कह देते हैं ना बाबा को कि बाबा कितनी देर हम ये अभ्यास करेंगे, हमको दुनिया में रह के कितने कारोबार करने हैं, है ना। तो इसीलिए फिर बाबा कहते हैं बेशक वो करने हैं, और उस करते समय आपको देह में रहते हुए देह से न्यारे होकर कर्म करना है। उसमें भी सफलता कहाँ से आएगी, अगर वो चंद क्षणों के लिए अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे। और तब जाकर जब बाप दादा, आजकल हम वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन अगर ये स्थिति में स्थित होकर हम उस वीडियो को सुनते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि बाप दादा हमारे सामने नहीं है। अन्यथा चलो जब तक गुलजार दादी थे हमारे सामने दिखते थे, पर अगर हमारी वो स्थिति नहीं तो वो आनंद भी नहीं ले पाते। कहने का तात्पर्य मैचिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने भी कहा ना, नंबर एक भी गलत हुआ, आप कितना ही बोलते रहो, जिसको कनेक्ट करना चाहा नंबर गलत था तो उसको कनेक्ट हुआ ही नहीं है, वो किसी और को जाके कनेक्ट हुआ है, और वो तो आपकी बात समझ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है आप किससे बात कर रहे हो। ऐसे ही होता है ना, तो बहन जी रॉन्ग नंबर है, क्योंकि हमारा उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैचिंग का होना बहुत बहुत जरूरी है, और इसलिए अशरीरी भव का अभ्यास जो बाबा ने हमें वरदान दिया है करना है। एक तो यहां मैचिंग की बात, और दूसरा जैसे भी गुलजार दादी भी, हम सभी को पता है कि 3 साल तक सेहत की वजह से दादी मुंबई में रहे, क्योंकि हमेशा डॉक्टरों के निरीक्षण के अंदर रहे। लेकिन बावजूद इसके अनुभवी लोगों ने जो उनके साथ रहे, सबने क्या शेयर किया, यहां तक बताया कि दादी की एज के अनुसार अगर उनका ऑपरेशन किसी बात का करना है, और उसके लिए उनको पहले एनेस्थीसिया, ऑपरेशन के पहले तो एनेस्थीसिया मतलब अनकॉन्शियस करना पड़ता है, तो कहा कि दादी की उम्र, दादी के शरीर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि हम एनेस्थीसिया देकर अनकॉन्शियस भी नहीं कर सकते, मतलब वो भी रिस्की है। तो तब जो उनके अंग संग है जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उन्होंने यही कहा, दादी कहती थी, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज होते थे ना कि कैसे करें अब, तो दादी कहती थी क्या बात है, आपको जिस दिन ऑपरेशन करना हो मुझे सिर्फ बता देना। तो दादी क्या करती थी, अपने आप को उस अशरीरी के अभ्यास में, उस विदेही पन के अभ्यास में खींच लेती थी, अंतर्मुखी कर लेती थी। जो हम पहले जब 7 दिन का कोर्स कराते हैं तो उसमें भी जो अष्ट शक्तियों का लेसन कराते हैं, तो हम क्या कहते हैं, राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियां, और पहली शक्ति कौन सी बताते हैं, वो कछुआ दिखाते हैं। और क्या विशेषता है उसकी कि कर्मेंद्रियों को अंदर खींच लिया। तो अभी अगर उसके ऊपर से कुछ चला भी जाए तो कर्मेंद्रियों से टच नहीं हो रहा है वो, और इसलिए उसका जो कवच है वो तो हार्ड है, इसलिए उसको कुछ भी एहसास नहीं है कि क्या मेरे ऊपर से गुजर गया। तो ऐसे ये जो अशरीरी भव का अभ्यास, और दादी ने तो कितना लंबा समय तक बाबा को अपना शरीर लोन के रूप में दे दिया। सिर्फ अव्यक्त पालना की बात नहीं है, जब से आई दादी यज्ञ में 8 साल 9 साल की उम्र में उनका ट्रांस का पाठ चालू हो गया, और ट्रांस माने ही देह से थोड़ा अलग होना पड़ता है, तो 36-37 वहां से लेके 69 तक वो ट्रांस वाला पार्ट, और फिर पीछे अव्यक्त वाला पार्ट। तो आप सोचो कितना अभ्यास होगा अपने आप को भीतर खींच लेने का, और उसी अभ्यास ने मदद किया। जो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि हमने ऐसा पहला पेशेंट देखा है कि पेशेंट को पता नहीं है कि तकलीफ क्या है, वो साथी लोग बता रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है और ये आपको ट्रीटमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि दादी ने तो अपने आप को अंदर खींच लिया था, अशरीरी का अभ्यास, विदेही का अभ्यास बढ़ा दिया था। और फिर अंतिम समय में जब वो शरीर छोड़ने की भी बात आई, तो जैसे कि मक्खन से बाल निकल गया। तो ये अभ्यास न सिर्फ मैचिंग के लिए जरूरी है, लेकिन हमें भी तो एक दिन शरीर छोड़ना है। बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं, सिर्फ मुरलियों में नहीं भक्ति मार्ग में भी ये बात कॉमन है, अंत मति सो गति। तो अगर मक्खन से बाल निकलने वाली अंतिम स्थिति नहीं होगी, मतलब कुछ कुछ अंत मति है, और फिर वैसा ही फिर गति हमारी हो जाएगी। इसलिए सिर्फ बाबा मिलन वाले दिन नहीं, बाबा मिलन वाले दिन तो हम ये अभ्यास करते ही खास अटेंशन रखते ही हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन, इसीलिए बाबा कहते हैं जब सुबह में आंख खुलती है तो पहला संकल्प ये हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, अर्थात ही बिना शरीर के, बिना अंग के मुझे विजुअलाइज करना है ना अपने आप को। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है, अपने आप को बिना देह का देखना, अपने आप को बिना शरीर का देखना। बाबा के दिनों में वो मर्जीवा का भी अभ्यास कराया जाता था, सब ऐसे सो जाते थे जैसे कि शरीर क्या हो गया है, मृत्यु को, मतलब आत्मा जैसे कि अलग हो चुकी है। तो हमें भी अभ्यास करना होगा कि जैसे ऊपर से हम आए बिना शरीर के, लेकिन जैसे ही ट्रामा में प्रवेश किया, माँ के गर्भ में प्रवेश किया शरीर में, और शरीर लेकर आए, लेकिन फिर उस शरीर को भी हम छोड़ेंगे। और तब बाबा ने कहा, एक तो सतयुग में देही अभिमानी स्थिति जरूर रहेगी, पर हम अभ्यास नहीं करने वाले हैं, वो नेचुरल होगी, लेकिन हाँ वो इतनी नेचुरल होगी कि जब शरीर छोड़ना होगा तब हमें ये स्मृति रहेगी, मैं एक शरीर छोड़ अभी दूसरा शरीर लेने जा रहा हूँ, तो खुशी खुशी से हम शरीर को छोड़ेंगे। तो पूरे ड्रामा को हम याद करें कि हमने कितने बार एक शरीर लिया, फिर उसमें कुछ समय जिया और फिर शरीर छोड़ दिया। तो वो सीन को भी अगर याद करते हैं तो वर्तमान में जिस शरीर में हम बैठे हैं उससे अपने आप को अलग करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम ऐसे कर रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना, फिर से ही तो कर रहे हो, कोई नई चीज थोड़ी कर रहे हो। और जब कोई चीज फिर से की जाती है तो कॉन्फिडेंस होता है कि आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस, क्योंकि मैं कर चुकी हूं पहले भी। तो ये स्मृतियां भी हमें क्या करती है, बहुत मदद देती है हमारे अभ्यास को सफल बनाने में। तो हम ये अपने आप को बार बार याद दिलाएं, क्योंकि अंतिम समय करीब आ रहा है। लेकिन सिर्फ अंतिम समय करीब आना काफी नहीं होता है। जैसे बाबा भी मुरलियों में कहते हैं ना, बच्चे पूछते हैं, बाबा अभी कितना संगम बाकी है, विनाश कब होना है? तो बाबा कहते हैं, विनाश तो अभी भी हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी है क्या? तो मतलब समय अंतिम कब भी होगा, लेकिन अंतिम समय के लिए जो अंतिम स्टेज चाहिए, वो स्टेज में आए हैं हम अभी। और अंतिम स्टेज क्या होगी? आत्मा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या होगा? जो बाबा कहते हैं ना कि धर्मराजपुरी में अपनी सजाएं पहले काटनी पड़ेगी, और वो धर्मराजपुरी में सजा काटने का मतलब, मैंने कांच को अपने पुरुषार्थ से साफ नहीं किया तो साफ होगा धर्मराजपुरी, माना वही होगा। और वो धर्मराजपुरी से जब मेरा वो कांच साफ हो जाएगा, तो साफ कांच को भी हम वतन में नहीं लेके जा सकते हैं। वतन में वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाने वाला है। और इसीलिए जो तीन लोक है हमारे बीच में है अव्यक्त वतन, इधर देह के साथ आत्मा है, ऊपर बिना देह के आत्मा है, लेकिन बीच वाले वतन में आत्मा कांच वाले शरीर के साथ है, जिसको ही हम सूक्ष्म शरीर मतलब लाइट जिसको हम कहेंगे। लेकिन एक परत तो होगी ना जिसके अंदर आत्मा है वो, तो उसको हम कांच, फॉर अंडरस्टैंडिंग शब्द यूज कर रहे हैं। तो वो सफाई होगी, लेकिन वो फिर आकाश में ही लटकता रह जाएगा ना, और हम आत्मा रूप में ऊपर चलेंगे। और जब वापस आएंगे तो वो वाला कांच वाला शरीर जो छोड़ के आए हैं, उसी में ही फिर प्रवेश करके नीचे आएंगे, उसी में ही प्रवेश करके फिर नीचे आएंगे। तो बाबा कई बार कहते हैं कि जब आप ऊपर जाते हो, अव्यक्त वतन क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नीचे आएंगे, अव्यक्त वतन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। बोलते हैं ना इसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी तो कलयुग में अंतर महसूस हो रहा है, इधर सृष्टि बहुत पतित है और उधर परमधाम एकदम प्योर है। इस बीच में थोड़ा हिस्सा इस पतितपने का ऊपर महसूस होगा, और उसका जिसको बीच वाला हिस्सा कहेंगे ना, थोड़ा इधर का झलक, थोड़ा इधर का झलक। लेकिन जब आएंगे तब तो ये वाली सृष्टि भी क्या होगी, पावन होगी। तो वो डिमार्केशन की तो जरूरत ही नहीं है कि अलग से महसूस हो ये कोई। और इसीलिए बाबा कहते हैं आते समय वो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली सूक्ष्म शरीर तो होगा ही ना, वही तो चित्त है, वही तो मन है, और क्या है, वही तो मन है, वही तो चित्त है। परमधाम में तो मन भी नहीं होगा ना, हम संकल्प करने वाले हैं क्या? पत्ता भी नहीं होगा कि हम बाबा के कितने करीब हैं, क्योंकि वो हमारी अवस्था क्या है, विश्राम वाली अवस्था है। जैसे यहां पर भी बाबा कहते हैं ना, रात को जब आप सो जाते हो तो आत्मा क्या हो जाती है, अशरीरी। और आजकल जो नींद नहीं आने की बहुत प्रॉब्लम है, एक ही कारण है, आत्मा अशरीरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर, जो कहा ना कांच के ऊपर, बहुत वो है, तो बार बार खींचाओ इसी तरफ हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जहां मैच होगी उसी तरफ तो खींचे जाएंगे ना। अब फ्रिक्वेंसी मैली वाली तो इधर है, और उधर जाना है तो फ्रिक्वेंसी कैसे चाहिए? पॉजिटिव वाली, सफाई वाली। तो इसलिए हमें विदेही स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव सिर्फ बाबा वाले दिन नहीं, लेकिन वैसे भी बढ़ाते रहेंगे तो फिर बाबा वाले दिन और इजी हो जाता है फिर। और अभी तो इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई सामने रथ बैठा हुआ नहीं होगा हमारे को, वीडियो के माध्यम से जो पहले चल चुकी है मुरलियां, उनमें से वो अनुभूति लेनी है कि बाबा मेरे सामने बैठे हैं, अर्थात मुझे भी अव्यक्त होकर अव्यक्त वतन में ही रहने का अभी समय आ गया है। तो जब ये दो अभ्यास, मतलब दोनों सेम ही विदेही अशरीरी शब्द यूज करो, तब ये अभ्यास जितना बढ़ेगा तब जाकर देही अभिमानी स्थिति के अभ्यास में हमें सफलता मिलेगी, और वो देही अभिमानी के अभ्यास की सफलता का परिणाम होगा ये कांच साफ होता जाएगा, ये कांच साफ होता जाएगा। तो देही अभिमानी स्थिति माना देह में रहते हुए देह से न्यारे, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए पोषण उसी कीचड़ से प्राप्त कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कीचड़ को अपने ऊपर सेट होने नहीं देता है, कीचड़ से वो लिप्त नहीं होता है, लेकिन क्या रहता है? निर्लिप्त रहता है, न्यारा रहता है। तो ऐसे हमें रहना तो इस देह के भीतर ही है, रहना तो इस देह वाली दुनिया में ही है, लेकिन फिर भी इससे न्यारे रहना है। और फिर भी इससे न्यारे रहना है का मतलब, ये जो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ऐसा था, सूक्ष्म शरीर माना ही मन, मन और चित, ये मन और चित सदा इसकी तरफ लगे हुए हैं। अब हमें इसको इस तरफ लगाना है, सीन क्रिएट करना है कि आज दिन तक मैं आत्मा इस मन को मालिक के रूप में पकड़ के नहीं रखा, उसको छोड़ दिया, तो बिना प्रयास के तो नीचे उतरना सहज होता है ना, तो देह की तरफ बढ़ेगा माना नीचे ही उतरेगा ना, बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर इसको अभी राइट दिशा देनी है तो लगाम तो पकड़नी पड़ेगी ना, लगाम को पकड़ना होगा। तो विजुअलाइज करना है, मैं आत्मा, ये शरीर और बीच में मन बुद्धि, मैंने इसकी लगाम अपने हाथ में ली है, ये जो आंख के माध्यम से बाहर झांक रहा था, कान के माध्यम से बाहर का सुन रहा था, मुख के नाम से बाहर के स्वाद ले रहा था, नाक के माध्यम से बाहर की खुशबू ले रहा था, त्वचा के माध्यम से बाहर का स्पर्श कर रहा था, और इसी इंद्रिय सुख में लगा पड़ा था, और अभी मुझे इन इंद्रियों से हटाकर अति इंद्रिय, आत्मा माने जहां इंद्रिया नहीं है, उसमें जाके स्थित करना है। इसको ही कहा बाह्य मुखी से अंतर्मुखी होना। इसको इधर छोड़ दिया, अभी तक हमने क्या किया, इसको इधर छोड़ दिया है, बैठी रहे आत्मा अंदर, और इधर मन की उसका धीरे धीरे तो जो प्रकाश है एनर्जी आ रही है, लेकिन कहाँ कांच मैला है तो जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो इसलिए और नीचे गिरते जा रहे हैं, और ज्यादा इंद्रियों के प्रति क्या हो रही है, तृष्णाएं कामनाएं वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे कहते हैं आग को बुझाने के लिए पानी नहीं, किसकी जरूरत है, पानी की चाहिए घी की जरूरत है, बोलो। आग को बुझाना है तो क्या डालेंगे आग में, घी या पानी? हाँ, पानी और घी डालेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा भड़क उठेगी। तो जितना ज्यादा इंद्रियों सुख में रमण करते रहेंगे उतना ही उसकी अभिलाषा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अतीन्द्रिय सुख तो पीछे रह जाएगा। लक्ष्य तो आनंद ही है प्राप्त करना, परंतु चूंकि ये पता नहीं था कि भीतर में आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, और पता नहीं होने के कारण इंद्रिय सुख के नाम पर आनंद के ही खोज में लगे पड़े हैं, परंतु चूंकि वो है ही नहीं आनंद, वो तो इंद्रियों का सुख, इंद्रिया अपने आप में जड़, क्योंकि इंद्रिया देह का हिस्सा, देह अपने आप में जड़, वो तो जड़ चीजें हैं और जड़ माना विनाशी, तो वो तो थोड़ी देर के लिए अनुभव हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, वो वाला सुख विनाश को प्राप्त कर जाता है, और चूंकि विनाश हो गया अब फिर से पाने की इच्छा होती है, तो हम लगे पड़े जैसे एक शराबी होता है ना, शराब पी लेता है, और जब शराब पीने के बाद नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसे कहीं ना कहीं गली कुछों में से रास्ते में गिरा पड़ा रहता है, और अगर कोई समझदार व्यक्ति वहां से गुजर रहा और उसको पहचान ले, अरे इतने बड़े घर का इंसान, उठो तुम कहां पड़े हो रास्ते में, तुम तो महलों के रहने वाले हो, और वो बड़बड़ में कहता है तुमको नहीं पता मैं तो महलों में हूं, क्योंकि अंदर उसको वो शराब के माध्यम से जो अंदर का कंट्रोल छूट गया है और उसके आधार से उसको वो अंदर का सुख महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही जो शराब पी थी उसका असर कम, वापस बाहर तब दिखाई देता है मैं महल में नहीं था मैं कहां था। हमारी भी हालत कुछ ऐसी है, हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। तो अब हमें इस इंद्रिय सुख के नशे में नहीं, नारायणी नशे में रहना है, आत्मा के नशे में रहना है, जिसको ही का देही अभिमानी स्थिति, इस आत्मा को सिर्फ ज्योति रूप नहीं, आत्मा के लिए बाबा ने कितने समान दिए हैं, उन समानों से मैं अपने आप को देखूं। हाँ, आज के लिए तो कितना सुंदर समान हमारे लिए बेस्ट होगा, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा जो स्वयं परमात्मा मेरे लिए मेरे पास मिलने आता है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमारे बीच में हमसे मिलन मनाने आता है, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें अपने दिल तख्त पर स्थान देता है, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, हमें अपने नैनों में नूर बना देता है, कहते तुम मेरे नैनों के नूर हो, मैं नूरे रतन आत्मा हूं, जैसा वो है सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार, वो सारे गुण और शक्तियां मेरे पास है, वो सागर है मैं गागर हूं, ये समान। तो हम गुलजार दादी का एक क्लास सुन रहे थे विदेही स्थिति पर, तो उन्होंने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया कि देखो कैसे देह में रहते हुए देह से न्यारा रहना है, तो कहा कि ये इंद्रिया, जैसे आपको समझो भोजन करना है, लाइट अगर चली जाती है तो भी अगर आप भोजन का कौर उठाएंगे तो क्या आंख में डालेंगे? गलती से भी नहीं डालेंगे आप, गलती से भी नाक में और उधर नहीं डालेंगे, कहां डालेंगे हैं? क्योंकि अभ्यास हो चुका है, तो वहां मन बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं, और आप मन बुद्धि सेल्फ में लगा सकते हो उस समय, परमात्मा में लगा सकते हो। तो फिर इस तरीके से देह में रहते हुए देह से न्यारे, इसी को ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। अभी जैसे यहां पर हम बैठे हैं, हम फोकस्ड हैं भट्टी के लिए, बाहर जो भी हो रहा है हमारा उससे कोई नाता नहीं, तो हम उसके प्रति क्या है? न्यारे हैं। ऐसे ही जब हम कहते भट्टी में आए हैं, एकांत का अभ्यास कर रहे हैं, तो एकांत का एक अर्थ होता है कि जब मैं अंदर बैठ झांकती हूं तो अंदर विचारों की भीड़ दिखती है। दिखती है नहीं दिखती है विचारों की भीड़? कौन से विचार? यही तो चल रहे, आंखों से जो कुछ देखा था, कानों से जो कुछ सुना था, जो कुछ खाया था, उसी से संबंधित विचार चल रहे हैं। और वही विचार, चूंकि अगर सिर्फ विचार नहीं चल रहे हैं, वो प्राप्ति की इच्छाएं हो रही है। अरे वहां पे ना आज जो सुबह कॉफी बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी, काश मुझे बैक जर्नी के समय 10 कोकियां मिल जाएगी तो अच्छा होगा। वट एवर, एक इच्छा हो रही है। भट्टी में आके किसी से मिले, हाँ उसका मोबाइल बहुत अच्छा है, मेरे को भी ऐसा मोबाइल लेना है। तो सिर्फ जो देखा, सिर्फ उसका चिंतन नहीं, अब उसको पाने से संबंधित प्लानिंग आदि चल रही है। या फिर किसी को देखा, हमारे रिश्ते में कुछ था, अभी भूले हुए थे जब तक दूर थे, लेकिन जैसे ही करीब आए वो वाली सारी बातें। तो यही तो विचारों की भीड़ मिलती है जैसे ही हम अंदर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं विचारों की भीड़ जरूर है, लेकिन एकांत का मतलब ये है कि विचारों की भीड़ में भी अकेले हो जाना। अर्थात इस विचारों की भीड़ को भी साक्षी होकर देखना। विचारों की भीड़ को भी साक्षी होकर देखना, उसमें बह नहीं जाना। जैसे थिएटर में स्क्रीन पर हम फिल्म देख रहे होते हैं, जो उसमें बह जाते हैं रोना भी शुरू कर देते हैं। हाँ, कोई सीन आई सांप की तो वहां से भी भाग के खड़े होते हैं, जैसे कोई वो सांप उसके पास आने वाला है। नहीं, लेकिन जिनको ये पूरा कॉन्शियस रहता है, ये तो पर्दे पर है, मैं तो इससे अलग हूं, तो वो डरते नहीं हैं, वो भागते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं, उसको साक्षी होकर देख रहे होते। ऐसे ही अंदर में भी जो पर्दा है उसमें विचारों की भीड़ दिख रही है, कोई किस प्रकार का विचार, कोई किस प्रकार का विचार, कोई किस प्रकार का विचार, उसके अनुसार दृश्य भी सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको अलग से साक्षी होकर देखूं, इसको कहते हैं एकांत। तो जब मैं ऐसा साक्षी होकर देखूंगी तो वो जो विचार बार बार उठ रहे हैं ना, उठ तो रहे हैं, लेकिन उसको मैं साक्षी होकर देख रही हूं, मतलब मैं उसको चाय पानी नहीं पिला रही हूं, मैं उसको चाय पानी नहीं पिला रही हूं, मैं उसको खाना नहीं खिला रही हूं, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे? अशक्त होकर गिर जाएंगे। और तब कहा कि वो मन का पर्दा साफ, पर्दा जो होगा साफ होगा तो उधर आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है ही उसकी किरणें, उसकी वाइब्रेशन को मैं अनुभव करूंगी, न सिर्फ अनुभव करूंगी सराउंडिंग में मेरे से वाइब्रेट होगी। और चूंकि अब मैं उस स्थिति में आ गई हूं, आत्मिक स्थिति में आ गई हूं कि जहां मैं आत्मा सिर्फ प्रकाश स्वरूप नहीं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, तो वो वाइब्रेशन मेरे से मैं अनुभव भी कर रही हूं और वाइब्रेट भी हो रहे हैं। ये वही वाले वाइब्रेशन है जिस वाइब्रेशन में परमात्मा सदा रहता है, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्रेम का सागर है, सदा शांति का सागर है। हम तो प्रेम के स्वरूप है, शांत स्वरूप है, और कभी प्रेम में है, कभी नफरत में है, कभी शांति में है और कभी अशांति में है। और इसलिए जैसे उन्होंने भी कहा ना कि पहले नंबर ठीक होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, क्या मैं उस फ्रीक्वेंसी पे आई हूं जो भगवान की फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही यहां पर एकांत का ऐसा अभ्यास करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, और जैसे ही हम, क्योंकि दादी जान की तीन चीजें याद दिलाती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मैं कहां की। तो मैं अपने स्वरूप में आ गई, मैं कौन, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उसको अनुभव कर रही हूं, वाइब्रेट कर रही हूं। मैं किसकी, मैं शिव पिता परमात्मा की। इधर विचार आया और साथ में विजुअलाइजेशन किया, तो क्या हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण कनेक्शन स्थापित हो गया। और जैसे ही कनेक्शन स्थापित हो गया, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो वो तो सागर है, मैं तो गागर हूं, तो उसकी एनर्जी मेरे तरफ आने लगती है। और जब मेरे तरफ एनर्जी आने लगती है तो मैं चार्ज हो जाती हूं। अब ये जो मैं चार्ज हो जाती हूं, जैसे बचपन में सीखा चलना, तो बच्चा जैसा जन्म लेता उसी समय थोड़ी उसको हम चलाना सिखाते हैं, थोड़ा बड़ा, लेकिन हम, और वो कितनी देर तक चलेगा उसका भी हम लंबा नहीं चलाते। कहीं देखो आप साथ में जाते हो बच्चे को लेके, कई बार चलना सीख गया लेकिन अभी भी छोटा है, बेटा साथ में चलो, नहीं मम्मी गोदी चाहिए, लेकिन चलो पहले उसको चलाते हैं। और फिर हम रियलाइज करते हैं कि छोटा है इतना लंबा नहीं चलेगा, तो फिर हम उठा लेते हैं, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं कि अभी इसमें कितनी शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम समझ लेते हैं ना, अब इसकी शरीर की भी शक्ति बड़ी हो रही, तो ज्यादा चलाते हैं और फिर सफल हो जाता है। ऐसे ही ये जो अभ्यास हम करेंगे तो आत्मा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, शक्तिशाली हो रही। तो अभी जो सिर्फ चंद पलों के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये चंद पल, एक सेकेंड भी हो सकता है, दो सेकेंड भी हो सकता है, धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, और आत्मा चार्ज होती जाएगी, और संपूर्ण चार्ज आत्मा को अपने देह से अलग महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जब वो अपने आप को देह से अलग महसूस करना बड़ी बात नहीं, तो देह में रहते हुए देह से न्यारे रहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जब देह में रहते देह से न्यारे होकर कर्म करते हैं, तो उन कर्मों की लेप छेप उस कांच पर नहीं पड़ती। इसी कोई तो कर्मातीत कहते हैं कि बंधन कर्म के नहीं, ऐसे कर्म जो आत्मा पर बंधन नहीं डाले, जो लेप छेप नहीं डाले। तो हमारी दादियों ने जो अव्यक्त हो गए हैं, बाबा हमारे जो अव्यक्त हो गए, मम्मा अभी तो वही समय है कि हम उनसे यही प्रेरणा लें कि हम भी इस अभ्यास को बढ़ा के जल्दी से जल्दी, क्योंकि कल भी हमने संदेश में सुना कि अभी और अच्छी सेवाएं होगी। किस आधार से? बाबा ने कहा कि इसी आधार से कि बच्चे इतना तक तो पुरुषार्थ कर चुके हैं, अभी इस पुरुषार्थ को बेशक अवश्य ही तो बढ़ाएंगे। जैसे माँ को रहता है, बच्चा अभी थोड़ा चलना सीखा है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा तो और ज्यादा चल ही लेगा ना। तो बाबा को भी हमसे पूरी आश है कि हम, हमारे सामने जो आदर्श दादियां हैं उन्होंने हमको बनकर दिखा दिया है अव्यक्त, अपने आप को कर्मातीत स्टेज तक लेकर गए हैं। तो सच्ची श्रद्धा सुमन उनके प्रति हमारे यही है कि हम उनके जैसा ये अभ्यास की देह में रहते हुए देह से न्यारी वाली स्थिति कि हमारा काज अभी गंदा नहीं हो, जो हुआ है उसको नीचे फेंकते जाओ, साक्षी होकर देखते रहो। ओके, ओम शांति।
Oh, अब जी को बा